ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जय मुदिरे। गृहोद्यानं कुसुमितये रम्यं बहु अमृद्रुमहि कूजत विहंगमिथुनं गायनमत्तमधुरतम्। मुख्य घर का आंगन सुंदर बगीचों से घिरा था, जिनमें मधुर सुगंधित फूल तथा अनेक वृक्ष थे, जिनमें ताजे फल उत्पन्न होते थे और वे ऊंचे तथा सुंदर थे। आप लोग बहुत लंबे समय से इस प्रसंग का श्रवण करते आ रहे हैं, तो पूर्व प्रसंग के साथ इसका यदि हम संबंधित करके बोलते हैं तो ये समझ में आता है कि कर्दम मुनि जी ने तपस्या की थी और तपस्या के परिणाम स्वरूप जब भगवत साक्षात्कार उन्हें प्राप्त हुआ था, प्रभु ने कहा कि कुछ वरदान मांगो, मेरा साक्षात्कार मेरा दर्शन निष्फल नहीं जाता। तो कर्दम जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे प्रभु, मुझे एक गृह में भी धेनु चाहिए, अर्थात मुझे एक स्त्री चाहिए, मैं विवाह करना चाहता हूं। तो प्रभु खिलखिला करके हंस पड़े, कितना भोला भाला है ये। तप करता है कठोर तप और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कहा कि हमें विवाह करना है। तो प्रभु प्रसन्न हुए, उनसे कहा ठीक है, परस्व माने परसों दिन इस विश्व के महाराज स्वयंभुव मनु अपनी पुत्री के साथ आपकी कुटिया पर पधारेंगे, वही तुम्हारी पत्नी होगी। तो ये सब भविष्यवाणी करके प्रभु अंतरित हुए थे। तो ये अंतिम अध्याय है, कपिल देवहूति का प्रसंग प्राय 9 अध्यायों में है और ये वाला अध्याय अंतिम। और ध्यान देने योग्य बात है, जो हम प्रसंग अभी पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, यहां पर कर्दम जी और देवहूति के गृहस्थ जीवन कैसा था, कितनी संपन्नता थी, कितना माधुर्य, कितनी सुंदरता थी, उसका वर्णन किया जा रहा है। और इस सुंदरता को कह करके वर्णन करने के पश्चात किस विषय पर, किस वस्तु पर, किस लक्ष्य पर हमारे दृष्टि को सुखदेव गोस्वामी अथवा भागवतकार वेदव्यास महाराज आकृष्ट करना चाहते हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है। क्या इंद्र की जो शोभा, इंद्र का प्रासाद, स्वर्ग की शोभा लक्ष्मी, इस वर्णन करना क्या जरूरत है? किसी के त्यागी बैरागी के पास एक सुंदर स्त्री की सुंदरता का वर्णन करना, इसका क्या अर्थ है? इस पर विचार करना चाहिए। भागवत का प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक शब्दों में विचार सन्निहित है। किस विचार से, किस उद्देश्य को लेकर के इस श्लोक का अवतरण यहां पर किया गया है, अब देखिएगा क्या इसका परिणाम होता है। मुख्य घर का आंगन सुंदर बगीचों से घिरा था, जिनमें मधुर, मुख्य घर का आंगन सुंदर बगीचों से घिरा था, यानी कि जो हम लोग घर बनाते हैं, हम लोग गरीब है, ज्यादा बहुत ज्यादा संपन्नता नहीं है, जगह भी नहीं है, तो एक डब्बा टाइप बना देते हैं, बस अंदर अंदर ही रह जाओ तीन चार। परंतु गृह की सुंदरता बाग बगीचों से ही होती है। घर हो उसके सामने एक बहुत सुंदर सा बगीचा हो, उसमें रंग बिरंगे फूल के पौधे हो, उसमें पक्षियों का कलरव सुनाई दे, इस कितना सुंदर लगता है। बड़े बड़े संपन्न परिवार प्राय ऐसे ही करते हैं। उसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या क्या फार्म हाउस, ऐसा ऐसा कहते हैं कि बगीचों में जाकर घर बनाते हैं, कहीं खेतों में, कहीं की जगह में उनको हरियाली चाहिए। और डब्बे की तरह, रेल डब्बे की तरह घर तो यहीं बनता है, एक के साथ कहीं बगीचा नहीं, कहीं कुछ नहीं है। पर एक संपन्न गृहस्थ, एक संपन्न व्यक्ति, उसका भाव क्या है, उसकी सुंदरता क्या है, उसकी संपन्नता की पहचान क्या है, इस श्लोक में ये लक्षित है। जिनमें ताजे फल उत्पन्न होते थे और वे ऊंचे तथा सुंदर थे, बहुत बहुत बड़े बड़े वृक्ष थे और फलदार वृक्ष थे, उनमें सुंदर सुंदर फूल और फलों से लदे हुए थे वृक्ष। ऐसे बगीचों का आकर्षण यह था कि गाते पक्षी वृक्षों पर बैठते और उनके कलरव से तथा मधुमक्खियों के गुंजार से सारा वातावरण यथा संभव मोहक बना हुआ था, यानी कि भोग का वातावरण था। यदा कदा कहीं भागवत में वर्णन आता है कि कबूतर कबूतर आवाज करते हैं और भौंरे गुंजार करते हैं, तो ये दोनों मादक स्थिति का वर्णन करते हैं, कहीं भोग का वातावरण पैदा करते हैं, कबूतर और भौंरे ये दोनों। तो कर्दम मुनि और देवहूति का जो संसार था, जो गृहस्थी थी, वो अत्यधिक संपन्न थी, बहुत कुछ था उनमें। इसकी एक छोटी सी झलक है, सुखदेव गोस्वामी यहां वर्णन करते हैं। आगे का श्लोक ये वाला लिखा हुआ है, यत्र प्रविष्टम आत्मानं विबुधानुचरा जगुः वाप्याम उत्पल गंधिन्याम कर्दमेनो उपलालितम। इसका शब्दानुवाद अनुवाद पढ़ लेते हैं। यत्र जहां प्रविष्टम प्रविष्ट हुए आत्मानं अपने ही विबुधा अनुचराः स्वर्ग के वासियों के संगी जगुः गाया वाप्यम ताल में उत्पल कमल गंधिन्याम सुगंध से कर्दमेन कर्दम द्वारा उपलालितम सावधानी से पाला गया। अनुवाद एवं तात्पर्य, जब देवहूति उस सुंदर बगीचे में कमल फूलों से भरे हुए ताल में स्नान करने के लिए प्रवेश करती तो स्वर्गवासियों के संगी गंधर्वगण कंदर्प के कर्दम के महिमामय गृहस्थ जीवन का गुणगान करते। देवहूति के महान पति कर्दम उन्हें सभी कालों में सुरक्षा प्रदान करते रहे। कृपया मेरे पीछे दोहराइए, जब देवहूति सुंदर बगीचे में कमल फूलों से भरे हुए ताल में स्नान करने के लिए, ये ताल क्या होता है, तालाब, पुष्करणी, जलमहल, अच्छा, ताल में स्नान करने के लिए प्रवेश करते हैं तो स्वर्गवासियों के संगी गंधर्वगण कर्दम के महिमामय गृहस्थ जीवन का गुणगान करते। देवहूति के महान पति कर्दम उन्हें सभी कालों में सुरक्षा प्रदान करते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में आदर्श पति पत्नी का संबंध अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णित है। कर्दम मुनि पति रूप में देवहूति को सुख के सारे प्रमुख साधन प्रदान करते थे। जैसा आप लोग देख रहे, सुंदर बगीचा है, सुंदर सरोवर है, और उस सरोवर की शोभा यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया, जब देवहूति उस सुंदर बगीचे में कमल फूलों से भरे हुए पुष्करणी में स्नान करने के लिए प्रवेश करती तो स्वर्गवासियों के संगी गंधर्वगण कर्दम के महिमामय गृहस्थ जीवन के गुणगान करते। व्यक्ति तब गुणगान करता है जब अपने से कहीं उत्कृष्ट वस्तु अथवा व्यक्ति को देखता है। अपने से निम्न व्यक्ति का गुणगान कोई नहीं करता, कोई करता है और करने का कोई अभिप्राय भी नहीं बनता। अपने से अधिक सुंदर हो तो व्यक्ति कहेगा वाह कितना सुंदर है, गंधर्व के समान रूप शोभा है, अप्सराओं के समान रूप शोभा है, ये कह सकता है। यदि कोई अच्छा गा भी लेता है, कवि है अथवा गायक है, कितना सुंदर गाता है, सुनने मात्र से मन मोह जाता है, दिल दीवाना होता है। कोई भी वस्तु कितनी संपन्नता है, कितनी उदारता है, कितनी दया है उनमें। कितनी हिम्मत है। अपने से अधिक जो है गुण उसी का ही वर्णन करते हैं। और कर्दम मुनि देवहूति कहा जाता है कि इस मर्त्य लोक में यही रहते थे और स्वर्ग के गंधर्वगण उनका गुणगान कर रहे हैं। यानी कि वो पुष्करणी कितना सुंदर होगी, कितनी सुंदरता उसमें होगी, फल फूल से लदे हुए है, पक्षियों की चहचहाट कलरब, ये सब सुंदरता को वर्धित करने वाली वस्तुएं हैं, भाव राज्यों को लेने वाले हैं। तो इस ये बात इसलिए कही गई कि कर्दम जी की जो संपन्नता थी, सार संक्षेप यही है कि देवलोकों से भी अधिक थी। बस इसका अभिप्राय यही है कि गंधर्व लोग आकर गान करते हैं, गंधर्व लोग ब्रह्मा जी के सभा में जाते हैं, इंद्र की सभा में जाते हैं, वहां अप्सराएं नृत्य करती है, गंधर्वगण गान करते हैं, परंतु वे गंधर्वगण कर्दम की संपन्नता का गान कर रहे हैं। इसका अर्थ होता है कि कर्दम जी की संपन्नता इंद्र लोक से भी अधिक। और ऐसे संपन्न पति किसी पत्नी का पालन करेगा तो कैसे करेगा, अपने ही भाव से ही करेगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इसी श्लोक में आदर्श पति पत्नी का संबंध अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णित है। कर्दम मुनि पति रूप में देवहूति को सुख के सारे प्रमुख साधन प्रदान करते थे, बहुत कुछ था सब देते थे, किंतु वे अपनी पत्नी के प्रति तनिक भी आसक्त नहीं थे। किंतु कह करके अब पीछे की सारी बातें काट दिए। पालन करते थे, साड़ी चूड़ी भोग विमान सब दिए थे, लेकिन तनिक भी आसक्त नहीं थे। जो ही कपिल बड़े हो गए वैसे ही कर्दम ने सारे पारिवारिक संबंध तोड़ लिए। मान लीजिए कोई कहेगा कि हम आसक्त नहीं है, बिल्कुल आसक्त नहीं है, तो आसक्त नहीं है उसका उसका प्रमाण क्या है, कैसे हमको पता चलेगा कि तुम आसक्त नहीं हो, हम आसक्त नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे ही कपिल बड़े हो गए तो कर्दम ने सारी आसक्ति तोड़ दी और छोड़ के चले गए। ये प्रमाण है। हम लोग जाते हैं प्रचारों में, कभी कभी उपहास की स्थिति पैदा होती है। कहीं हम पंजाब गए थे, एक बनिया थे अग्रवाल परिवार के थे, स्वाभाविक बड़े मधुर भाषी होते हैं अग्रवाल। शास्त्र कहता है जीवाग्रे बसती लक्ष्मी, यदि बनिया मधुर भाषी नहीं होगा तो व्यापार धंधा नहीं चलता। तो बहुत कुछ पछे ही पीछे से वो लूट लें, लेकिन आगे बहुत मधुर भाषण करते हैं। तो हम गए, बोले महाराज बैठो, बैठे तो बहुत बढ़िया था, बंगला बंगला सब बहुत अच्छा था। तो आगे आगे सामने मैंने कहा ये किसके हैं, उन्होंने कहा महाराज ये सब आपके ही है, वो जानते, वो सब उन्हीं के ही थे। बोले ये सब आपके ही है। अच्छा, ये जितने सब फर्नीचर से जो है सब आपके है, ऐसे ही कह रहे थे। हमको भी थोड़ा विनोद करने के लिए टाइम वो आपका अवकाश मिल गया, तो उनका पुत्र भी वहीं था। तो मैं कहा ये कौन है, महाराज ये आपके ही तो पुत्र है। हम बहुत अच्छी बात है, ऐसे कहते भी है। उनकी पत्नी वहीं खड़ी थी मैंने कहा हाँ जी अग्रवाल जी ये कौन है? नहीं ये मेरी पत्नी है। उन्होंने अब क्या कहते है? मैंने कहा, मैं भी थोड़ा विनोद किया, मैंने कहा ये धन भी मेरा है, ये पुत्र भी मेरा है, ये सब फर्नीचर ये सब मेरे है, तो ये माता जी केवल आपके ही है। तो ये एक भाव है, ये भाव पर ये कहने में ये प्रसंग किस लिए कहा कि कह तो देते ये सभी आपके ही है, लेकिन भाव 100% उनमें चिपका हुआ है कि ये सारा मेरा ही है, त्याग बिल्कुल नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं पारिवारिक संबंध को तोड़ लिए, ये अनासक्ति की पहचान है। पूरा किया, घर गृहस्थी चलाया, संपत्ति बाड़ी सब कुछ परिवार को दिया, और यहां आश्रम में आकर कहा मैं यहीं रहूंगा यहीं खाऊंगा। अरे वहां से तो कुछ लेके इधर आ जाओ, अब जो संपत्ति आपने दे दी वो सारे नालायक है, कोई ऐसा इसमें उतनी योग्यता है ऐसे अधिकांश क्षेत्र में दिखा देंगे राइट, लेकिन इतनी आसक्ति है वो एक चौवन भी मंदिर को देना नहीं चाहता। कहीं साधु सेवा साधु संग नहीं, हम यही बिताएंगे, हमको संसार अच्छा नहीं लगता, इसी को धोखा कहा गया है। इसी प्रकार देवहूति के महान राजा स्वयंभू मनु की पुत्री थी, वह योग्य और सुंदर भी थी, परंतु वह अपनी पति की सिद्धि पर पूर्णतया आश्रित थी, अपने पति पर संपूर्णतया वो निर्भर थी। मनु के अनुसार स्त्री को जीवन की किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। मनु महाराज मनु जी जिन्होंने लिखा है मनु संहिता, तो उस आचार्य संहिता के अनुसार प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्त्री को किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। इसका अर्थ नहीं है कि स्त्री जाति के प्रति सनातन धर्म में कोई ऐसी दुर्भावना है, शारीरिक दृष्टि से चाहे स्त्री कैसा भी कितने भी मजबूत क्यों ना हो पुरुष के पास दुर्बल सिद्ध होती है, होती कि नहीं? यदि सबल होती तो मिलिट्री में एक रेजिमेंट होता, लेडी 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 सेना, पर ऐसा नहीं देखा जाता। लड़ने के मैदान में स्त्रियां लड़ नहीं सकती, आत्मरक्षा के लिए समाज में जो भूखे मानव है जो इंसान है बुरे दृष्टि वाले, तो उनसे बचाव करने हेतु एक समर्थशाली व्यक्ति चाहिए, चाहे पुत्र हो चाहे पिता हो चाहे पति हो, इससे उनकी सुरक्षा है। कुछ दिन पहले आप लोग जानते हो समाज में भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई, बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई थी, दिल्ली की जो घटना घटी, घटना नहीं घटी है कि बस में जा रही थी कोई बालिका और उसके प्रति कोई बुरा व्यवहार किया गया था और अंततः सिंगापुर में उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको लेकर के माताओं ने बड़ा हड़ताल, आज भी चल रही होगी कहीं से वो मुकदमा है। तो इस केस में एक न्यूज में घटना बात आई थी कि आसाराम बापूजी ने कहा कि उस स्त्री को उस बालिका को चाहिए था कि उसको भाई बता दें कुछ ये बता दें, अथवा उनको रात को 11 बजे सिनेमा देखकर अपने पुरुष मित्र के साथ इस तरह से वापिस लौटना अच्छा नहीं था। तो उस पर बहुत कमेंट्स आए, कैसे कह दिया कैसे कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैंने बहुत विचार किया उस बात को, कई मित्र मंडल में मैंने चर्चा भी की। वास्तव में उस समय जो आसाराम बापूजी ने कहा वो उचित नहीं था, जो आग जली रही है उसमें फिर क्या घी डालना है। लेकिन यदि हम उसको शांत चित्त से देखते हैं विचार करते हैं, आजकल जो भी कुछ बहुत ही बुरी घटनाएं घट रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप लोग निष्पक्ष रूप से अपने हाथी पर छात रख के छाती पर हाथ रख के बताइए, इतना नग्न प्रदर्शन है, इतना भड़काऊ प्रदर्शन है, उसके चलते सारी झंझटी पैदा होती है कि नहीं? पहले काल में माताओं को साड़ी पहनने की क्यों व्यवस्था की गई है? क्योंकि पुरुष में एक ऐसा स्वभाव, पुरुष का क्या, ये शास्त्र में ही बताया गया है कि स्त्री पुरुष का आकर्षण ये बहुत भयंकर आकर्षण है कि नहीं? सभी काल में लिखा हुआ,
इंद्र जी भी स्वर्ग के इतने भोग प्राप्त हुए व्यक्ति इंद्र भी कभी कभी धरती में आकर्षित होते हैं सुंदरता से, और दूसरों की बात क्या कहें। तो एक मानव एक मानवी के प्रति आकृष्ट हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो साड़ी पहनना, अपने अंगों को ढकना और घूंघट टालना, इनसे क्या होता है, जो भड़काऊ प्रदर्शन कम होता है, व्यक्ति की जो वासना जो आग वो धड़कने में थोड़ा कम होता है। पर हम इतने भड़काऊ वस्त्र पहनेंगे, जीन पहनेंगे, वो पहनेंगे, ये भागवत में ये सब सामाजिक चर्चा भी है। नीति पर यदि हमारा जीवन नहीं टिकता तो आध्यात्मिकता पर टिकने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए पहले त्रेता में रामलीला, बाद में कृष्ण लीला, फिर बाद में चैतन्य लीला। राम जी की नीति पर जीवन नहीं टिकता तो कृष्ण की लीला पे मन का प्रवेश नहीं है। ये अनुकरण होगा फिर तो बहुत कुछ अड़चन पैदा होगी। तो ये जो समस्याएं खड़ी हो रही है उसके लिए हम लोग ही जिम्मेदार है। मात्र समाज ही कम से कम पूरा जिम्मेदार ना हो, 50% तो जिम्मेदार है ही है। तो भागवत से यह हमको शिक्षा ले लेनी चाहिए। संरक्षण है, विधि व्यवस्था है, पोशाक परिच्छद की व्यवस्था है। हमारी पोशाक, हमारी परिपाटी, हमारा वस्त्र, उसमें संस्कृति है। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम दूसरों को भोगने हेतु प्रोत्साहित नहीं करते। इसलिए नारी जब विधवा होती है उनको सफेद वस्त्र दिया जाता है। क्यों क्यों दिया जाता है, इसका कारण क्या है? कारण यही है कि यदि कम उम्र में वो विधवा हो जाती भी है, उनके मन में वासना भी होती है, तो संसार के कई पुरुष है तो उनको भड़काने में भी कोई पीछे नहीं चलेंगे। तो उनको एक पाबंदी लगाई जाती है उन पर। पहले तो सतीदाह प्रथा था, उनको मार दिया जाता था। राजा राममोहन राय ने उस प्रथा को रोक दिया। तो उनको इस तरह से एक रखा जाता है ताकि उनकी जो सुंदरता ज्यादा समाज के सामने ना आ पावे। मां के पास रखा जाता है, पिता के पास रखा जाता है, और उनमें ज्यादा शोभा बढ़ाने की श्रृंगार आदि करने के लिए मना किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये सब कारण की वजह से। सनातन धर्म में जो सामाजिक भाव है वो आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए ही दिया गया, केवल इंद्रिय तृप्ति के नहीं है। एकादश अध्याय में कहा गया जो विवाह की बात है, आप लोग देख लेना एकादश स्कंद पढ़ करके। विवाह को भोग के लिए नहीं किया गया, विवाह में भोग को संकुचित करने के लिए प्रथा की गई है। मांस भक्षण की इजाजत है, मांस भक्षण की इजाजत मांस भक्षण के लिए नहीं है, उस मांस भक्षण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए है। क्यों नहीं? मांस यदि भोग करना चाहते हो वो काली जी को भोग लगा दो और साल में एक दो बार खाओ। तो आदमी सोचेगा साल में भी एक दो बार खाएंगे, उसको भी भोग लगाएंगे, दुनिया भर का नाटक कौन करेगा, नहीं खाना अच्छा ही है। धीरे धीरे प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर बढ़ने के लिए सब विधि व्यवस्था है। तो यहां पर जो भागवत की व्यवस्था है, कई माताएं, कई जो हमारे सभ्य तथा कथित सभ्य माताएं ये कहेगी, ये जो इसे पुरानी बात है, ये सब पुरानी बातें हैं, हम अपने सुरक्षा कर लेंगे। पर ऐसा होता नहीं प्रभु, ऐसा होता नहीं, बल्कि विपरीत भाव पैदा होता है। भ्रष्टाचार, व्यभिचार आदि बहुत कुछ अनर्थ होने लगता है। वो तो छोड़िएगा, हम दूसरे को क्यों देखें? सबसे पहले यहीं से पैदा तैयार कर ले। हमारे मंदिर की स्थिति देखो, इतने भड़काऊ वस्त्र पहन लेते हैं, क्या जरूरत है इतने पहनना? बल्कि हम लोग पुरुष होकर के यहां बटन लगाते हैं, लगाते नहीं? देखो हमारा बटन यहां लगा हुआ है, पर माताएं यहां बटन लगाना नहीं चाहती। देखो कोई भी पुरुष की कमीज देखो, वहां इनके यहां बटन मिलेगा, बल्कि यहां तो कम हो गया, स्वेटर यहां तक पहन ले नेक वाला। ये सब बातें हैं। मनु के अनुसार स्त्री को जीवन के किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। बालपन में स्त्री को अपने पिता माता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के संरक्षण में, और बुढ़ापे में अपने सयाने पुत्र के संरक्षण में, ये तीनों बलवान है। पति युवावस्था में, पुत्र भी युवावस्था में और पिता तो है ही है, तीनों संरक्षण देने में समर्थ है, इनके संरक्षण में रहना चाहिए। मनुसंहिता के इन सारे कथनों को देवहूति ने अपने जीवन में उतार लिया था। केवल कहने भर की बात नहीं थी, एक वास्तविक जीवन उसने जिया था। बालपन में पिता के पास थी देवहूति और युवावस्था में पति के पास थी करदम जी के पास, और तीनों शक्तिशाली, और बुढ़ापे में कपिल जी के पास। कपिल बड़े हो गए और ये साधना में एकदम पूर्णतया नियुक्त हो गई, तभी वो छोड़ के चले गए। जिस समय छोड़ के गए तब देवहूति माँ की साधना बड़ी बहुत ऊंचे स्तर की थी, वहां से कोई ऑफिस नहीं आता, बस वो देह गए कि शुद्ध नहीं थी, तो बाग संसार की तो क्या कहें। बालिका रूप में वो अपने पिता के आश्रित थी, बाद में ऐश्वर्यवान होते हुए भी अपने पति के तथा अंत में अपने पुत्र कपिल देव के आश्रम में वो थी। इस प्रकार से इस श्लोक के अंतर्गत ये तात्पर्य समाप्त होता है। तो भागवत के हर प्रसंग में हम यदि अपने व्यवहारिक जीवन पर उसको उतारना चाहते हैं, कई शिक्षाएं हमें प्राप्त होती है। देखो इसमें एक तो बात है, पीछे 18 श्लोक में गृहोद्यानम कुसुम, ये तात्पर्य ये हो गया, बाकी श्लोकों में जो थोड़े बहुत शब्द हैं उसको हम व्याख्या करने के लिए प्रयास करते हैं। गृहोद्यानम कुसुमितई रम्यम बहु अमरद्रुमहि, कर्दम मुनि का जो संसार था, जो संपन्नता थी, उनमें से एक बात थी कि उनके जो बगीचे थे उन बगीचों में बहुत ही दिव्य वृक्ष थे, अमरद्रुमहि। अमर माने अमर, देवताओं को अमर कहते हैं, जैसे स्वर्ग लोक में, जैसे यहां पर धरती में कई पेड़ पौधे होते हैं, तो देवताओं के लोक में स्वर्ग में भी भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष होते हैं। यहां के जो पेड़ वहां नहीं है, कभी कभी वहां के वृक्ष यहां आते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने पारिजात वृक्ष को सुधर्मा सभा तक ले आए थे, इसे धरती पर ही इधर ले आए थे। तो अमर द्रुम, यहां कटहल के पेड़ वहां थोड़े ही है, ऐसा नहीं है। यहां के भारत में जितने वृक्ष है, कई वृक्ष अमेरिका में भी नहीं है, अमेरिका में जो वृक्ष है यहां नहीं है। आज आप जो यूकेलिप्टस यहां वृक्ष देख रहे हैं, यहां भारत में ये वृक्ष था क्या? नहीं था, हमको याद है तभी हम छोटे थे पढ़ रहे थे स्कूलों में, तो ऑस्ट्रेलिया से ये वृक्ष को मंगाया गया था और रोड के साइड में लगाए गए। देखो है ना, इतने लंबे लंबे पेड़ है, ये पहले ये वृक्ष नहीं थे। तो जैसे पृथ्वी में भी स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष दिखने को मिलते हैं, वैसे ही देवलोक के वृक्ष अलग होते हैं, उनको अमर द्रुमा कहते हैं। शब्द कोश में इसका वर्णन आया है, संतानः कल्पद्रुमश्चः, संतानः कल्पद्रुमश्चः, एक 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 वृक्ष का नाम है संतान, एक मैंने सुना है यहां भी, एक एक कल्पद्रुम का नाम है संतान और एक का नाम है कल्पद्रुमः। पुंसी वा हरिचंदनम, एक वृक्ष का नाम है हरिचंदन। कस्तूरी तिलकम ललाट पटली वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रिवर मुक्तिकम करतले वेणुम करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम। तो संतानः कल्पद्रुमश्च पुंसीवा हरिचंदनम पंचैते अमरद्रुमाः मंदारः पारिजातकः। पांच हो गए ना, संतान और आपके कल्पद्रुमः और हरिचंदन, पारिजात और मंदार, ये सब देवताओं के वृक्ष है। ये अमर कुश में ये हमें ये पांच वृक्षों के नाम मिले, मंदारह पारिजातक पंचेत है कल्पद्रुमः पंचेत है अमर देवतरावः, ये पांच देवताओं के तरु है। तो वो वृक्ष सब यहां लाए गए थे, अथवा करदम जी के शोभा, करदम जी की जो कुटिया थी, जो घर गृहस्थी जहां उनके महल था, वो वहां की शोभा ऐसी थी। और उसमें तरह तरह के पक्षी थे, उनका कलरव, उनकी चहचहट से बहुत सुंदर वातावरण पैदा हुआ था। और आप लोग देख रहे हो जो पुष्करिणी थी वो भी अत्यंत शोभा संपन्न थी। पर ये सब का वर्णन क्यों है? भागवत में कई एक स्थान पर इंद्र सभा का वर्णन आता है। जब बलि महाराज जी की बात आती है वहां पर देखना, वो इंद्र की जो संपत्ति है उस वो जैसे ही वर्णन आता है और बलि महाराज जी के घर के परिवार का जो उसके संपन्न था उसका वर्णन ऐसा आता है। और देखो कपिल मुनि के यहाँ कर्दम मुनि के संसार का वर्णन भी ऐसा आ रहा है। मेरे प्रभु, इसका वर्णन करने के पीछे एक महान रहस्य है। ये रहस्य भागवत में इसका उद्घाटन हुआ भी है और आगे चल के 20वें श्लोक में इसका उद्घाटन होने वाला है। हम आज संकेत मात्र ही कर देते हैं। हेत्वा तदप्सितम, जिस जिस सुंदरता का वर्णन मैंने किया है, सुंदर पुष्करिणी है, गंधर्व लोग गुणगान करते हैं, पक्षियों की चहचहाट, सुंदर वातावरण और अमर द्रुम से संयुक्त ये जितना पय फेन फेन निभा सैया, सुंदर सुंदर बेड है, पलंग है, ये सब संपन्नता का होते हुए भी देवहूति ने हित्वा उसका त्याग कर दिया। ये प्रमुख बात है, ये प्रमुख बात है। कहीं भी भागवत में इसका वर्णन आता है उसके पीछे आप जरूर देखोगे उसका त्याग कर दिया गया है। परीक्षित महाराज जी के बारे में भी ऐसा ही कहा गया, उनकी पत्नी, उनके पुत्र, उनका सिंहासन, उनका राजवैभव अतुलनीय था। पर जैसे ही सुना ठीक है सातवें दिन तक्षक के काटने से हमारी मृत्यु होगी, उन्होंने त्यक्त्वा त्याग दिया। त्यक्त्वा तूर्ण मशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत्। ये इसका मुख्य अभिप्राय है। जो गरीब है, जिसके पास कुछ है नहीं, उसके लिए त्यक्त्वा शब्द का अर्थ ही क्या है? मैंने त्याग दिया। क्या त्याग दिया? तुम्हारे पास है क्या? था क्या था जो तुमने त्याग दिया? नहीं, कर्दम जी के पास बहुत कुछ था। उनका योग वैभव, पुत्र रत्न कपिल, सुंदर उद्यान, संपन्नता हर प्रकार से, लेकिन देवहूति के लिए त्यक्त्वा हित्वा। हित्वा शब्द का अर्थ होता है तद अभिमानम त्यक्त्वा, यानी कि उस संपदाओं में जो अभिमान उसका त्याग कर दिया देवहूति ने। यह प्रमुख बात है, श्रीधर स्वामी ने इस पर टीका की है। हित्वा माने तद अभिमानम त्यक्त्वा, उनका अभिमान त्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया, किस लिए त्याग कर दिया? प्रमुख बात है कि सुंदरता का जहां कहीं भी वर्णन है तो उसके त्याग का वर्णन जरूर अवश्य आता है बाद में, ताकि सुखदेव गोस्वामी ये दिखाना चाहते हैं मेरे भक्त के भीतर कितना त्याग होता है। गौर भक्त गणेर है वैराग्य प्रधान, जहां देखी तुष्ट हन गौर भगवान। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थ में को पुरुष पुराण। ये बड़ी बात है मेरे प्रभु, इतनी बड़ी संपन्नता का त्याग। क्यों त्याग दिया, क्या कारण है? इतना संपन्न घर गृहस्थी क्यों त्यागा, क्या कारण हो सकता है? आप लोग बताइएगा। ये अनुभव की बात है, केवल सुनिए मत है। आप इसको अनुभव करके बताइए व्यक्ति कब छोड़ देता है, उसके प्रति मन में वितृष्णा भाव कब पैदा होता है। बढ़िया सुख से चलती हुई गृहस्थी कब व्यक्ति छोड़ता है, एक आध कारण बताइए, क्या कारण होता होगा व्यक्ति छोड़ देता है? नंबर वन क्या होता है? हाँ नहीं, वैराग्य तो उसी को कहते हैं। छोड़ता क्यों है, क्यों वैराग्य आता है? बिना कारण वैराग्य हमारे किसी में भी नहीं। एक बार मैंने कहा था, बहुत बड़े बड़े भक्तों से भी कहा था, बिना कारण हम श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते। श्री कृष्ण से तो बिना कारण प्रेम कोई गिने व्यक्ति कर पाते हैं। हम तो बहुत परीक्षा करते हैं, श्री कृष्ण में इतनी उदारता है, उनमें 64 गुण है, उन्होंने पुतना का उद्धार कर दिया तो हमारे जैसे नालायक का उद्धार क्यों नहीं करेगा? बहुत कुछ परख निरीख करके करते हैं, अंधाधुंध प्रेम करने वाला भाग्यशाली होता है, वो हम लोग के भाग्य में है नहीं। कृष्ण से अंधाधुंध प्रेम करने वाला गिने चुने कोई होते हैं, कोई कारण नहीं। अहेतु की हेतु नहीं है, हमारा सारा प्रेम सहेतु की है, हेतु सहित है। ये वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुनिया भर के कारण है, हेतुओं के लिस्ट है। तो देवहूति के मन में वैराग्य है, वो इतनी सुंदरता, इतनी संपन्नता, इतनी शोभा के प्रति वो उनका चित्त आकृष्ट है। क्या कारण, व्हाट वुड बी द रीजन, क्या कारण मेरे प्रभु माता बताओ क्या कारण है? कब वैराग्य आता है? आकर्षक वस्तु तो किसी ने देखी नहीं, वो अलग बात है, इतने जल्दी वैराग्य नहीं है। नहीं मेरे प्रभु सीधे शरीर के उत्तर देने का प्रयास करो, जब मौत का तांडव घर में मचता है तब वैराग्य आता है। सीधे शरीर का उत्तर यही है। किसने देखा कृष्ण को, कितनी सुंदरता, कितनी आभा, किसने देखा? बड़े लोगों ने देखा होगा, कोई एक दो गिने चुने। अरे पैसा नहीं है पकोड़ा खाने के लिए, रसगुल्ला खरीद करेंगे तब ना टेस्ट पता चलेगा। गीता के वही श्लोक है, हाँ रसो परम दृष्टवा निवर्तते, परम है कहां, हे कहां परम, बिल्कुल परम ही है नहीं, नॉर्मल ही नहीं चल रहा है तो परम कहां से आएगा मेरे प्रभु। जब ये मौत आती है, चाणक्य पंडित ने कहा सत्संगे च मृत्यु रोगशय्यायाम या मतिर भवेत, सत्संग में जैसी मति रहती है, रोगशय्या पर जैसी मति रहती है, और मौत का तांडव जब मचता है उस समय व्यक्ति की स्थिति जैसी रहती है। यदि वही मति सदैव रहेगी तो कौन लभेत मुक्तिम, फिर मुक्ति किसको नहीं होगी, सबको हो जाएगी, सबको मुक्ति हो जाएगी मेरे प्रभु। आज मौत से भी ज्यादा दर्दनाक स्थिति में देवहूति गुजर रही है, क्या है? अपने स्नेहास्पद को उसका विरह, पति छोड़ के चले गए, वो मौत से ज्यादा दर्दनाक नहीं है? मर गया मर गया, पर होनहार जो है, होनहार बिरबान को हो चिकने पात, जो होनहार लड़का है वो छोड़ के चला गया। एक माता की गोद से एक अच्छा पुत्र, एक अच्छी संतान निकल जाए, उसके लिए और ज्यादा कुछ दर्दनाक स्थिति हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। तो आज देवहूति को जो संसार सुना सुना लग रहा है उसका हेतु क्या है मेरे प्रभु? उसके पुत्र का विरह, पुत्र छोड़ के चले गए कपिल, पति छोड़ करके चले गए, वो जो प्रबल विरह होता है तब कहीं मन में ये प्रचंड वैराग्य पैदा होता है। संसार बेकार है, संसार बेकार है, फिर चाहे वही कितनी अच्छी वस्तु क्यों ना हो, बहुत कुछ हो, फिर भोगने के लिए मन नहीं जाता है। विरह से वितृष्णा है, निर्वासन मन होता है, मन में वासना का स्थान नहीं होता, प्रचंड विरह, विरह की अग्नि जलती है, धधकती है, उसमें सारी वासनाओं की लकड़ी राख हो जाती है, और विरह से ध्यान का फल होता है, ध्यान लगता है। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने इस पर एक बहुत अच्छा भाव दिया है, उन्होंने कहा चाहे दुश्मनी हो चाहे कुछ भी हो, दुश्मन वैसे शत्रुता से मन आकृष्ट होता है, पर हमको तो कृष्ण से शत्रुता करना ही नहीं है, पर देवहूति का मन अपने पुत्र के प्रति जो आकृष्ट हुआ उसका मूल कारण है स्नेह। हम ज्ञान प्राप्त करके कृष्ण का ध्यान नहीं कर सकते, कैवल्य शास्त्र ज्ञान शास्त्र के द्वारा कृष्ण का ध्यान बनेगा ऐसा कतई संभव नहीं है, नहीं। सप्तम स्कंद में भी कहा गया भयात द्वेषात स्नेहात यथा भक्ति ऐश्वरी मनः, अथवा भक्ति से आवेश्य तद अघम हित्वा बहव तद गतिम गता। बोले आवेश तो कई कारणों से होता है, द्वेष से भी होता है, वो तो कई कई प्रकार के कारण है, लेकिन स्नेह का जो बंधन होता है उस स्नेह को पास कहा गया। पास माने फंदा, स्नेह पासम दृढ़म छिंदी, स्नेह को फंदा कहा गया है। स्नेह से जल्दा जितनी जल्दी व्यक्ति फंसता है और किसी से नहीं फंसता। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुसो कर्तो मोक्ष द्वारम अपावृतम। स्नेह को फंदा माना गया मेरे प्रभु। हम राजी नहीं होते जाने के लिए। मान लीजिए आप मुझे लेना चाहेंगे, हम राजी नहीं होते, लेकिन यदि आप मेरे गले पे फंदा डाल करके ले जाओ खींचोगे तो हम मजबूर है, कोई उपाय नहीं। इसलिए स्नेह की तुलना पास के साथ की गई है, चाहे वो फंदा दोनों तरफ काम करता है, या तो घर गृहस्थी की तरफ खींचेगा या तो कृष्ण की तरफ है फंदा। इसीलिए इसी प्रसंग में कपिल उपाख्यान के 25वीं संति अध्याय यानी 25वें अध्याय में कहा गया, प्रसंगम अजर पाशम। ये जो स्नेह है, ये जो आसक्ति है, ये अजर है, ये बूढ़ी नहीं होती है, ये जर्जर नहीं होती है, ये सदैव, इसकी जो रस्सी है सदैव मजबूत रहती है, ये कटती टूटती नहीं है। बोले स एव साधु शुक्र, तो और वही फंदा को साधु में लगा दो, अर्थात उसकी जो डोर है, उसकी जो सीमा है, साधु के हाथ में दे दो, मेरे महाराज मेरे को खींचो बस, फिर खींचते चले जाएंगे। तो श्रीपाद बल्लभाचार्य भाव देते हैं कि पुत्र स्नेह रूपी जो फंदा है वो देवहूति को आकर्षित कर रहा था आध्यात्मिक जगत के लिए, और ये सब वातावरण ऐसी कृपा से ही प्राप्त होता है, अपनी इच्छा से, अपनी भावना से, अपनी साधना से नहीं होती। प्रभु कृपा करके ऐसा ऐसा भाव देते हैं, ऐसा वातावरण देते हैं। कैसा वातावरण देते हैं? कहीं पुत्र के रूप में प्रभु पैदा हो गए, तो जब वो पुत्र कहीं छूट जाता है, यशोदा के जिले तो वही केस आया सॉरी देवकी के लिए, पुत्र जन्म हुए कृष्ण और चले गए गोकुल, तड़पती रह गई मां, तड़पती रह गई। इस स्नेह बंधन से व्यक्ति का मन, व्यक्ति का चित्त, व्यक्ति भाव राज्य में दृढ़ होता है। केवल ज्ञान से ध्यान नहीं दृढ़ होता, ना शुष्क ज्ञान से कभी नहीं होता, स्नेह से होता है। जिस बच्चे से तुम्हारा प्रेम ज्यादा है और उसके प्रति भाव जाता है, मन जाता है, वही घटना तो अजामिल के केस में हो गया। कितने लोगों ने ज्ञान दिया हुआ कि अजामिल ब्राह्मण था, पहले ज्ञान नहीं था, बिल्कुल ज्ञान था, प्रत्यक्ष प्रमाण आप सामने सामने देखो घटनाएं, पर हम उसको मिलाने में थोड़े असमर्थ होते हैं। अजामिल का ध्यान क्यों गया? स्नेह पासम, प्रचंड स्नेह था नारायण, छोटा सा बच्चा है। ऐसे ही स्नेह यदि कृष्ण के प्रति हो जाए फिर तो कहना है कि वही देवहूति के प्रसंग में हो गया, दृढ़ स्नेह, दृढ़ बंधन हो गया। फिर वो ध्यान में इतने तन्मय होने लगी, ये सब गृह उद्यानम कुसुमितम, ये सब उनके पास तुच्छ हो गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हित्वा प्रेम, मेरे प्रभु ये तो बहुत ही पुरानी बात है, हम लोग के लिए करना बहुत ही दुष्कर है, कोई नहीं कर पाता। आज की बात हम कह दें, ये तो घर गृहस्थी की बात कही जा रही है ना, कि कैसे आसक्ति टूटती है, जब हमारा स्नेह कृष्ण में जमता है, दृढ़ीभूत होता है। एक गृहस्थ थे यही मथुरा मंडल के, एक बार जब चैतन्य महाप्रभु इमली ताला में बैठकर नाम संकीर्तन किया करते थे, तो एक दिन वो गृहस्थ आए, केसी घाट में स्नान किए और इमली ताला ऐसे ही होकर आ रहे थे इधर कालीदह, तो उन्होंने देखा इमली ताला के नीचे एक दिव्य सुंदर पुरुष विराजमान है और उनके जिह्वा पे निरंतर कृष्ण 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 निकल रहा था। वे आए और प्रणाम किए। महाप्रभु ने पूछा के तुम्हें कहां तुम्हार घर, हा? तुम कौन हो, तुम्हारा घर किधर है? तो कृष्ण, उनका नाम जो था, उन्होंने कहा कृष्णदास नाम मोर गृहस्थ पामर, मेरा नाम है कृष्णदास और मैं पामर गृहस्थ हूं। अच्छा, तो उन्होंने कहा, प्रभु कल मैंने एक सपना देखा और सपना देखकर मैं इधर आ गया तो आपके दर्शन हो गए। महाप्रभु ने मुस्कुराया और महाप्रभु के भाव भंगी से इतने आकृष्ट हो गए तो वहीं रहने लगे। दूसरे दिन जब महाप्रभु उठ के चलने लगे तो महाप्रभु के साथ चलने लगे कमंडल और उनका जलपात्र लेकर चलने लगे, बहिर्वास जलपात्र। हाँ? उस प्रसंग में कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि प्रभु संगे रहे घरे स्त्री पुत्र छाड़िया। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ वो कृष्णदास कवि वो कृष्णदास क्षत्रिय रहने लगे घर में स्त्री पुत्र को छोड़ करके। यही अनासक्ति है, यही प्रेम है। जब हमारा कहीं प्रेम होता है, कहीं लगाव होता है, तो हम अधिक से अधिक वहां रहना चाहते हैं, उनका सानिध्य हमें चाहिए, तो घर परिवार के प्रति लगाव अपने आप टूट जाती है। यही तरीका है। यदि हम स्नेह को बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं हमको पूछना चाहिए हमारा कृष्ण से कैसे प्रेम बढ़े, स्नेह बढ़े। बस स्नेह ही चाहिए। स्नेह का दूसरा शब्द है फंदा। बस हमारे गल में फंदा लग जाए, कृष्ण हम नहीं जा पाते, हमारे गल में फंदा लगाओ और तुम आकर्षित करो, बस इतना ही चाहिए। इतने से ही काम बन जाता है मेरे प्रभु। तो देवहूति प्रसंग में ये जो श्लोक है, इसका वर्णन से कभी हमको ऐसे झूठ मूठ का भाव नहीं रखना चाहिए कि देवहूति के उधर ऐसा था घर गृहस्थी, ऐसा था, हम भी उद्यान बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, ये सब बेकार की बात है। नहीं, ये वर्णन करने के बाद सुखदेव गोस्वामी इसलिए वर्णन करते हैं, भैया इतने सुंदर घर गृहस्थी का देवहूति ने छोड़ दिया, तो तुम्हारे पास जो कुटिया है उसका भी त्याग कर दो। और ये कदापि नहीं कह रहे हैं तुम बनाओ और छोड़ो। महाभारत में कहा गया दान पुण्य करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी प्रसंग में जब भागवत धर्म का वर्णन किया जाता है, कहते हैं कीचड़ में पैर डाल के धोने के बजाय कीचड़ में पैर डालना ही नहीं चाहिए। क्यों? धन कमाओ, धन को फिर दान करो। जब तुम धन कमाते हो और दान नहीं करते हो तो उसमें भारी गलती है। बहुत तरह तरह पात्र ढूंढो, करो वो करो, उनको दान करो। नहीं, यदि अच्छे तुम यदि अच्छे व्यक्ति हो, तुम कृष्ण पाना हम चाहते हैं, तो धन कमाने की जरूरत ही कहां है। कई गृहस्थ हो गए धन बिल्कुल नहीं कमाए, कौन कीचड़ में जाए और पैर धोए। सुदामा जी हुए बिल्कुल धन नहीं कमाए। वर्तमान गृहस्थमी जद्र छाया चुपपन्निन वर्तमान गृहस्थमी, जो हरि मिला वो से हो गया। श्रीवास पंडित नहीं कमाते थे। इसका अर्थ होता है हमारे पास जितना हरि इच्छा से प्राप्त है, आठ भी भगति जथा लाभ संतोषा, सपने हो ना देखी है प्रदोषा। हमारे पास ईश्वर की इच्छा से जितना भी है उतने में हम संतुष्ट रह जाए और अधिक से अधिक समय हम कृष्ण को दें, उससे हम प्रेम करें, स्नेह करें, तभी हमारा संसार टूटेगा, अन्यथा बहुत ही दुष्कर है। तो इन श्लोकों का भाव यही है। इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद है। कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव बृंद की जय। गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल।